ओपनिंग नरेशन तयशुदा। एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार। अब हमारी भाषा में यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार और ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे जर्मन दार्शनिक के विचारों की गहराइयों में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही अक्सर लगता है कि कुछ बहुत जटिल होगा।
हाँ, कुछ गूढ़ सा।
बिल्कुल, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हेगल। लेकिन इनकी सोच ने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया।
इसमें कोई शक नहीं, 19वीं सदी के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक, जर्मन आदर्शवाद के शिखर पुरुष माने जाते हैं। और उनके विचार आज भी आप देखिए, दर्शन, राजनीति, इतिहास, हर जगह गूंजते हैं।
हाँ, कभी समर्थन में तो कभी जोरदार विरोध में।
बिल्कुल।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन तथाकथित जटिल विचारों के सार को पकड़ें, हेगल के जीवन के उन मोड़ों को समझें जिन्होंने उनकी सोच को दिशा दी, और देखें कि भाई 2 सदी पहले का ये दार्शनिक आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है।
हाँ, और हमारे पास हेगल पर कई महत्वपूर्ण लेख और विश्लेषण हैं जिनकी मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे।
चलिए तो शुरू करते हैं इस वैचारिक सफर को।
देखिए, हेगल को समझने के लिए उनके समय को समझना बहुत जरूरी है। वो यूरोप में ना एक बड़ी उथल पुथल का दौर था।
हाँ, वो फ्रांसीसी क्रांति और
बिल्कुल, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने तो जैसे सदियों पुरानी व्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया था, और फिर नेपोलियन के युद्ध, पूरे महाद्वीप में जैसे भूचाल आ गया था।
हेगल सिर्फ इन घटनाओं को देख नहीं रहे थे, है ना? मतलब उनके लिए ये सिर्फ राजनीतिक उथल पुथल नहीं थी।
सही कहा, हेगल के लिए ये सब इतिहास की अपनी एक अंदरूनी चाल का नतीजा था। वो इन घटनाओं में विश्वात्मा, जिसे वो गाइस्ट कहते हैं, उसको काम करते हुए देख रही थी।
विश्व आत्मा, गाइस्ट।
हाँ, एक ऐसी शक्ति जो मानवता को भले ही संघर्ष और विरोधाभासों के जरिए, पर आजादी की एक ऊंची अवस्था की ओर ले जा रही थी। तो ये घटनाएं सिर्फ बैकग्राउंड नहीं थी, ये उनके दर्शन का, आप कह सकते हैं, कच्चा माल थी।
और उस समय का बौद्धिक माहौल कैसा था? इमैनुअल कांट का तो बहुत दबदबा था।
हाँ, कांट ने तो दर्शन की दिशा ही बदल दी थी। उन्होंने बताया कि हमारा ज्ञान बाहरी दुनिया और हमारे मन की बनावट दोनों से मिलकर बनता है। पर कांट ने एक लाइन खींच दी थी कि हम परम यथार्थ को, मतलब असल चीज को, नहीं जान सकते।
अच्छा,
लेकिन हेगल और उनके साथ ही आदर्शवादी जैसे फिश्ते, शेलिंग, वो इस लाइन को तोड़ना चाहते थे। उनका मानना था कि नहीं, तर्क की पहुंच असीमित है, वो सच तक पहुंच सकता है।
तो एक तरफ तो ये राजनीतिक क्रांतियां चल रही थीं और दूसरी तरफ ये विचारों का ये मंथन, माहौल तो पूरा चार्ज्ड होगा।
बिल्कुल, आजादी क्या है, तर्क क्या चीज है, इतिहास किधर जा रहा है, उसका मकसद क्या है, ये बड़े बड़े सवाल थे हवा में। और हेगल की महत्वाकांक्षा थी कि इन सबका एक एक जुड़ा हुआ पूरा जवाब दिया जाए।
चलिए अब थोड़ा उनके शुरुआती जीवन पर आते हैं। स्टुटगार्ट में 1770 में जन्म हुआ एक प्रोटेस्टेंट परिवार में, क्या बचपन से ही कुछ खास बात थी?
शुरुआती जीवन तो देखिए सामान्य ही था, लेकिन हाँ, ट्यूबिंगन के एक धार्मिक स्कूल में, जिसे सेमिनेरी कहते हैं, वहाँ उनकी बौद्धिक चिंगारी भड़की।
अच्छा,
और वहीं उनकी दोस्ती दो और कमाल की युवाओं से हुई, एक तो कवि फ्रेडरिक होल्डलिन और दूसरे दार्शनिक फ्रेडरिक शेलिंग।
हाँ, ये तिकड़ी तो बहुत मशहूर है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये तीनों फ्रांसीसी क्रांति से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने मिलकर एक स्वतंत्रता का पेड़ भी लगाया था। सच है क्या ये?
ये किस्सा मशहूर तो बहुत है, और ये उनके उस समय के जोश और माहौल को दिखाता भी है। वो घंटों दर्शन, राजनीति, आज़ादी, इन सब पर गर्मा गर्म बहसें करते थे। बाद में हेगल ने कुछ साल प्राइवेट ट्यूटर का भी काम किया।
अच्छा, उससे क्या फर्क पड़ा होगा?
उससे उन्हें किताबी दुनिया से बाहर निकलकर समाज की जो असलियतें हैं उनको देखने का मौका मिला, अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का।
उनके अकादमिक करियर में फिर बड़ा मोड़ कब आया?
जेना यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू करना एक अहम पड़ाव था, और फिर आया 1806 का वो साल, बड़ा नाटकीय था।
हाँ, बताइए ना।
एक तरफ तो हेगल अपनी पहली महान किताब फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट पूरी कर रहे थे,
हाँ,
आत्मा का संवृत्ति शास्त्र या चेतना का फेनोमेनोलॉजी,
बिल्कुल।
और दूसरी तरफ नेपोलियन की सेना जेना शहर में घुस रही थी। सोची जरा माहौल।
बाप रे,
और तभी उन्होंने नेपोलियन को देखकर वो मशहूर बात कही थी, मैंने विश्व आत्मा को घोड़े पर सवार देखा है। इसका क्या मतलब निकालें? क्या वो नेपोलियन के फैन हो गए थे? देखिए, ये तारीफ से ज्यादा ना एक दार्शनिक टिप्पणी थी। हेगल किसी व्यक्ति नेपोलियन की तारीफ नहीं कर रहे थे, वो तो इतिहास को बदलने वाली एक बड़ी ताकत को जैसे साक्षात देख रहे थे।
अच्छा,
उनके लिए नेपोलियन उस वक्त की जरूरत का प्रतीक था, एक ऐसी शक्ति जो पुरानी चीजों को तोड़कर कुछ नया बना रही थी। ये दिखाता है कि वो कैसे ठोस घटनाओं में गहरे अमूर्त सिद्धांत देख पाते थे।
जेना के बाद क्या हुआ? क्या सीधे प्रोफेसर बन गए?
नहीं, कुछ समय थोड़ी अस्थिरता रही। उन्होंने अखबार में एडिटर का काम किया, एक स्कूल के हेडमास्टर भी रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शोहरत फैलने लगी और आखिरकार 1818 में उन्हें बर्लिन यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र का सबसे बड़ा पद मिला।
और बर्लिन में तो वो फिर छा गए होंगे।
सही मायने में एक बौद्धिक सुपरस्टार बन गए। उनके लेक्चर सुनने के लिए पूरे यूरोप से छात्र आते थे। वो जर्मन दर्शन का केंद्र बन गए थे। अफसोस, 1831 में बर्लिन में हैजा फैला और उनकी अचानक मौत हो गई।
तो अब आते हैं उनके विचारों और मुख्य किताबों पर। फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट से शुरू करते हैं। कहते हैं इसे समझना बहुत मुश्किल है।
हाँ, ये हीगल की सबसे मौलिक किताबों में से है, पर है बहुत सघन। ये असल में चेतना की यात्रा का नक्शा है। कैसे साधारण सेंस एक्सपीरियंस से शुरू होकर शक, तर्क, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इन सब पड़ावों से गुजरती हुई चेतना आखिर में निरपेक्ष ज्ञान यानी एब्सोल्यूट नोइंग तक पहुंचती है।
निरपेक्ष ज्ञान, ये क्या है?
ये वो अवस्था है जहां चेतना मतलब हमारा मन वास्तविकता को और खुद को एक पूरी जुड़ी हुई चीज के तौर पर समझ लेती है।
और इसी किताब में वो मशहूर मालिक गुलाम द्वंद भी है, मास्टर स्लेव डायलेक्टिक।
हाँ बिल्कुल, ये चेतना के विकास का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हेगल दिखाते हैं कि कैसे हमारी आत्मचेतना यानी हम खुद को जो समझते हैं वो अकेले में नहीं बनती, वो दूसरों के साथ संघर्ष में और एक दूसरे को पहचान यानी रिकॉग्निशन देने की प्रक्रिया में उभरती है।
पहचान, रिकॉग्निशन।
हाँ, मालिक और गुलाम दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और इसी संघर्ष से आजादी की गहरी समझ पैदा होती है। ये सिर्फ कोई समाज का विश्लेषण नहीं है, ये हमारे मन के बनने का, हमारी पहचान बनने का मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक खाका है।
दिलचस्प। फिर है साइंस ऑफ लॉजिक, इसे तो और भी मुश्किल माना जाता है।
बिल्कुल, ये हेगल के पूरे सिस्टम का लॉजिकल ढांचा है। इसमें वो विचार की शुद्ध श्रेणियों जैसे होना, न होना, बनना, कारण, असर, इन सब का अध्ययन करती हैं। और हेगल का दावा बहुत क्रांतिकारी था।
क्या?
वो कहते थे कि ये सिर्फ हमारे सोचने के तरीके नहीं हैं, यही असल में वास्तविकता की बनावट भी है। लॉजिक और रियलिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसी विचार को उनका निरपेक्ष आदर्शवाद कहा जाता है, कि असलियत बुनियादी तौर पर मानसिक या तार्किक है।
मतलब दुनिया विचारों से बनी है?
एक तरह से हाँ, या कहिए कि दुनिया की तह में एक तर्क है, एक लॉजिक है।
और उनकी राजनीतिक सोच एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट में क्या खास है?
इसमें हेगेल आजादी की एक बहुत अलग परिभाषा देते हैं। उनके लिए आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई रोक टोक न हो या हम जो चाहें करें।
तो फिर क्या है?
सच्ची आजादी मिलती है तर्कसंगत सामाजिक ढांचों में, जैसे परिवार, सिविल सोसाइटी और सबसे जरूरी एक व्यवस्थित राज्य। इनमें भागीदारी करने से, अपने कर्तव्यों को निभाने से। ये विचार बाद में काफी विवादित भी हुआ, जैसा कि आपने कहा।
हाँ, उस पर आएंगे। तो क्या कोई ऐसी किताब है जिसमें उनके सारे विचार एक साथ मिल जाए?
हाँ, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंसेस। ये उनके पूरे सिस्टम का एक सार या नक्शा पेश करती है। इसमें लॉजिक, प्रकृति का दर्शन और आत्मा या मन का दर्शन सब शामिल हैं।
अगर हमें हेगेल के सबसे केंद्रीय विचार को एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगा?
शायद ये कि असलियत एक गतिशील, तार्किक और पूरी तरह जुड़ी हुई प्रक्रिया है, जिसे वो गाइस्ट, आत्मा मन चेतना कहते हैं, और इतिहास इसी गाइस्ट का खुद को समझने और आजादी हासिल करने का सफर है।
और इस सफर को चलाता कौन है? वो है द्वंद्वात्मकता, डायलेक्टिक। ये हेगेल का सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट है।
इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाएंगी?
जरूर। देखिए, हेगेल का मानना था कि तरक्की सीधी लाइन में नहीं होती। कोई भी विचार या स्थिति, जिसे वो थिसिस कहते हैं, अपने अंदर ही अपना विरोधाभास यानी एंटीथिसिस पैदा करती है।
अच्छा, विरोध उसी के अंदर से?
हाँ, फिर इन दोनों के बीच तनाव होता है, संघर्ष होता है, और इस संघर्ष से एक ऊंची, ज्यादा बेहतर स्थिति या विचार जन्म लेता है, जिसे सिंथेसिस कहते हैं।
और फिर?
फिर ये सिंथेसिस खुद एक नया थीसिस बन जाता है और ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है, ऊपर की ओर, ज्यादा समझ और ज्यादा आजादी की तरफ।
यानी टकराव सिर्फ बुरा नहीं है बल्कि जरूरी है। प्रगति के लिए विरोध चाहिए। ये तो आज की दुनिया को समझने के लिए बहुत काम का लग रहा है।
बिल्कुल, हेगल हमें दिखाते हैं कि कैसे विरोधी ताकतों के टकराने से ही नया सच या बेहतर सिस्टम बन सकता है। ये सिर्फ विचारों की दुनिया में नहीं, समाज में, राजनीति में, इतिहास में, हर जगह लागू होता है।
हेगल की तुलना अगर हम दूसरों से करें, कांट से, तो वो आगे जाना चाहते थे, ये तो हमने बात की।
हाँ, कांट ने जहां तर्क की सीमाएं बताईं, हेगल ने कहा तर्क असीमित है। अगर प्लेटो के लिए सत्य के रूप या फॉर्म्स हमेशा एक जैसे रहते थे, बदलते नहीं थे,
हाँ वो स्थिर थे,
तो हेगल के लिए सत्य और कॉन्सेप्ट्स वो इतिहास के साथ विकसित होते हैं, वो बदलते हैं, डायनामिक हैं।
और कार्ल मार्क्स, उनका हेगल से क्या लेना देना था, ये बहुत सुना है।
मार्क्स असल में युवा हेगेलियन ग्रुप के सदस्य थे। उन्होंने हेगल का ये द्वंद्वात्मक तरीका, ये थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस वाला, इसे अपनाया।
हाँ,
लेकिन उसे बिल्कुल पलट दिया। जहां हेगल ने इतिहास को स्पिरिट या विचारों के विकास की कहानी कहा, मार्क्स ने कहा नहीं, इतिहास असल में भौतिक परिस्थितियों यानी इकोनॉमी और क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष की कहानी है। मार्क्स ने मजाक में कहा भी था कि हेगल सिर के बल खड़े थे, मैंने उन्हें पैरों पर खड़ा कर दिया, यानी आदर्शवाद को भौतिकवाद से बदल दिया। और ये देखिए इतिहास का फेर कि हेगल, जो शायद उस समय के प्रशियन राज्य के समर्थक माने जाते थे, वो मार्क्सवाद के एक तरह से बौद्धिक दादा बन गए।
ये तो कमाल की बात है। हेगल की विरासत तो वाकई बहुत जटिल और फैली हुई है।
हाँ, उनकी मौत के फौरन बाद ही उनके फॉलोअर्स दो हिस्सों में बट गए। एक रूढ़िवादी दक्षिणपंथी, जो उस समय की व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे, और दूसरे क्रांतिकारी वामपंथी हेगेलियन, जिनमें मार्क्स भी थे, और उनका असर बहुत दूर तक गया।
जैसे
अस्तित्ववाद में जॉन पॉल सार्त्र और सिमोन द बोवार ने मालिक गुलाम द्वंद का इस्तेमाल आजादी और दमन को समझने के लिए किया।
अच्छा।
और फिर क्रिटिकल थ्योरी के विचारकों ने, फ्रैंकफर्ट स्कूल वालों ने, समाज की आलोचना के लिए हेगल की अवधारणाओं का खूब इस्तेमाल किया।
और आजकल
भी पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज में पहचान और सत्ता के संघर्ष को समझने में हेगल के विचार काम आते हैं।
यानी आज भी जब हम पावर, आइडेंटिटी, इतिहास की दिशा या सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो हेगल कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में मौजूद होते हैं। फ्रांसिस फुकुयामा ने तो इतिहास का अंत की बात करके हेगल को फिर से चर्चा में ला दिया था।
बिल्कुल, हेगल के सवाल आज भी हमारे सवाल हैं, भले ही हमारे जवाब उनसे अलग हों।
उनके कुछ मशहूर कथन भी हैं जिन पर बात करनी चाहिए। पहला और शायद सबसे ज्यादा जिस पर बहस होती है, जो वास्तविक है वो तर्कसंगत है और जो तर्कसंगत है वो वास्तविक है। इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक है?
नहीं नहीं, ये एक बहुत खतरनाक लगने वाला कथन है अगर इसे सीधे सीधे समझ लिया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा है या न्यायपूर्ण है। हेगल का मतलब ज्यादा गहरा था।
क्या था?
पहली बात कि वास्तविकता की एक अंदरूनी बनावट है, एक लॉजिक है, जिसे तर्क से समझा जा सकता है। दूसरी बात कि जो विचार या सिद्धांत सचमुच तर्कसंगत हैं, उसमें हकीकत बनने की ताकत होती है, वो देर सवेर दुनिया में सामने आएगा। ये असल में रियलिटी और रीजन के बीच एक गहरे कनेक्शन का दावा है।
एक और बहुत खूबसूरत कथन है, मिनर्वा का उल्लू सांझ ढलने पर ही अपने पंख फैलाता है।
हाँ, मिनर्वा ज्ञान की देवी हैं और उल्लू उनका प्रतीक। हेगल कह रहे हैं कि हम किसी युग या सभ्यता को पूरी तरह तभी समझ पाते हैं जब वो अपने अंत के करीब हों। जैसे दिन ढलने पर ही हम पूरे दिन को समझ पाते हैं। सच्चा ज्ञान या समझ अक्सर पीछे मुड़कर देखने से ही आती है, जब चीजें बीत चुकी होती हैं।
क्या बात है! मतलब दर्शन इतिहास का पोस्टमार्टम करता है
एक तरह से। हाँ,
और एक थोड़ी सी निराशावादी लगने वाली बात भी उन्होंने कही, अनुभव और इतिहास यही सिखाते हैं कि लोगों और सरकारों ने इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखा।
हाँ, ये हेगल का यथार्थवादी पहलू दिखाता है। वो मानते थे कि इतिहास भले ही तर्कसंगत रूप से आगे बढ़ता हो, लेकिन इंसान अक्सर, चाहे अकेले हों या सरकारें, वो उसके सबक सीखने में नाकाम रहते हैं और वही गलतियां बार बार दोहराते हैं।
ये तो आज भी सच लगता है। खैर, हेगल की आलोचनाएं भी तो कम नहीं है। एक तो उनकी भाषा की मुश्किल।
हाँ, उन पर ये इल्जाम तो हमेशा लगा कि वो जानबूझकर इतना मुश्किल लिखते हैं। शोपेनहावर जैसे उनके जो विरोधी थे, वो कहते थे कि ये बस शब्दों का जाल बुनते हैं ताकि कोई समझ ना पाए। और ये बात तो है, उनकी स्टाइल आसान नहीं है, बहुत घनी है।
और एक बहुत गंभीर आरोप है कि उन्होंने राज्य को व्यक्ति से ऊपर रखा और इसे तानाशाही को बढ़ावा मिला।
हाँ, ये एक बड़ी बहस का मुद्दा है। कार्ल पॉपर जैसे दार्शनिकों का मानना है कि हेगल का जो राज्य केंद्रित दर्शन है, उसने 20वीं सदी की तानाशाही सरकारों के लिए वैचारिक जमीन तैयार की।
लेकिन उनके समर्थक
कहते हैं कि ये हेगल की आज़ादी की सोच को गलत समझना है। हेगल के लिए सच्ची आज़ादी अराजकता में नहीं बल्कि एक तर्कसंगत राज्य के कानूनों और संस्थाओं के अंदर रह के ही मिल सकती थी। तो यहाँ हमें दोनों पक्षों को देखना होगा, ये सीधी बात नहीं है।
और वो इतिहास का अंत वाली बात, क्या वो सच में मानते थे कि उनके समय के प्रशियाई राज्य में इतिहास खत्म हो गया?
ये भी एक आम गलतफहमी है। ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि हेगल का मतलब ये नहीं था कि अब कुछ नया नहीं होगा या विकास रुक गया। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया तो हमेशा चलती रहती है। उनका मतलब शायद ये था कि आज़ादी का जो सिद्धांत है वो अपनी तार्किक मंजिल तक पहुंच गया है।
अच्छा, कुछ रोचक किस्से भी हैं हेगल से जुड़े हुए।
हाँ, कई हैं। जैसे वो छात्र जीवन में उनका और उनके दोस्तों होल्डरलिन और शिलिंग का वो स्वतंत्रता का पेड़ लगाना।
हाँ, वो तो मज़ेदार है।
या ये कि वो लेक्चर देते समय अक्सर अटकते थे, बुदबुदाते थे, मतलब बहुत अच्छे लेक्चरर नहीं माने जाते थे, फिर भी छात्र उनके विचारों की ताकत से बंधे रहते थे।
और उनकी सबसे अहम किताब फिनोमिनोलॉजी ऑफ स्पिरिट का युद्ध के बीच में बचना, वो तो फिल्मी कहानी लगती है।
बिल्कुल। और ये भी कि इतने अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट दार्शनिक होते हुए भी वो दुनिया में क्या चल रहा है, राजनीति में, अखबारों में, इसमें गहरी दिलचस्पी रखते थे।
एक मानवीय पहलू भी है शायद।
हाँ, उनका एक अवैध पुत्र था जिसे उन्होंने बाद में स्वीकार किया और उसका पालन पोषण भी किया। ये उन्हें सिर्फ एक दार्शनिक के बजाय एक इंसान के रूप में भी दिखाता है।
तो हेगल की इस पूरी चर्चा के बाद हम क्या मुख्य बात याद रख सकते हैं?
शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि विचार और दुनिया, ये दोनों कभी स्थिर नहीं होते। वो हमेशा एक तनाव, एक संघर्ष, एक द्वंद्व से गुजरते हैं और इसी से आगे बढ़ते हैं। हमें विरोधाभासों से घबराना नहीं चाहिए
बल्कि उन्हें समझना चाहिए।
हाँ, उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि शायद उन्हीं में तरक्की का राज छुपा है।
और आज के इस उलझी हुई, बटी हुई दुनिया में जहाँ पहचान के सवाल इतने अहम हो गए हैं, क्या हेगल हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं?
ये सवाल मैं सोचता हूँ हमारे श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहिए। क्या हमारे आज के सामाजिक और राजनीतिक झगड़ों में हेगल की वो द्वंद्वात्मकता, वो थीसिस एंटीथीसिस की प्रक्रिया दिखती है? क्या पहचान, रिकग्निशन पाने की हमारी जो कोशिशें हैं वो उसी मालिक गुलाम द्वंद्व का कोई नया रूप है जिसके बारे में हेगल ने लिखा था? क्या हम सिर्फ अपने थीसिस पर, अपनी बात पर अड़े हुए हैं या किसी सिंथेसिस, किसी समाधान की ओर बढ़ने को तैयार हैं? ये वो सवाल हैं जिन पर हेगल हमें आज भी सोचने पर मजबूर करते हैं।
बिल्कुल, सोचने के लिए बहुत कुछ है।
क्लोजिंग लाइन तयशुदा। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकतरा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।